समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं मनोज और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी तन्वी खुराना। नमस्कार तन्वी।
नमस्कार मनोज, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड ऑफ कोर्स द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग यू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे एंड इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर वी हैव अ लॉट इन स्टोर फॉर ऑल ऑफ यू। टुडे इज 18th of August 2025 एंड अ मंडे, सो लेट्स विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी मंडे।
जी, तो अब नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी घोषित किया है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद इसकी घोषणा की। श्री नड्डा ने कहा कि गठबंधन के सभी दलों ने इस निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनाना है, जिससे उपराष्ट्रपति चुनाव आम सहमति से संपन्न हो। चुनाव 9 सितंबर को होगा।
संसदीय बोर्ड की बैठक में, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में हुआ, सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और नामों पर विस्तृत रूप से जो पार्टी में एक्सरसाइज हुई थी, उन सारे एक्सरसाइज के बारे में डेलिब्रेशन हुआ, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री चंद्रपुरम पुन्नास्वामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे।
Our correspondent takes a look at the life and works of Mr. Radhakrishnan.
Beginning his political journey as a student leader, Chandrapuram Punnuswamy Radhakrishnan was actively involved in organizations such as the RSS and Jansangh. Since then, he has used politics as a medium to serve the public. Mr. Radhakrishnan was elected twice to the Lok Sabha from Coimbatore, securing victory by a record margin of more than 1.1 lakh votes. As Member of Parliament, he was part of India's parliamentary delegation to the United Nations and later to Taiwan. In Tamil Nadu, he served as the state president of BJP, where he actively raised social and developmental issues. As the chairman of the Koya board between 2016 and 2020, Mr. Radhakrishnan transformed India's Koya sector, taking exports to an all-time high of over 2,500 crore rupees. Mr. Radhakrishnan has also served as governor of Jharkhand, Telangana, Puducherry and Maharashtra. In Jharkhand, he travelled across all 24 districts within just 4 months, engaging directly with citizens and officials to strengthen grassroots governance. He also made notable contributions towards tuberculosis eradication in Jharkhand, Puducherry and Maharashtra. Born in Tirupur, Tamil Nadu, Mr. Radhakrishnan is the first OBC leader from South India nominated for the office of Vice President. An agriculturalist and industrialist by profession, he is admired for his integrity, vision and unblemished public life. With more than 4 decades serving people as a karyakarta, Mr. Radhakrishnan's journey reflects service, leadership and unwavering commitment to the nation. Vishnu PS, Akashwani News, Delhi.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार मनोनीत करने के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के फैसले का स्वागत किया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री राधा कृष्णन ने सार्वजनिक सेवा के लंबे दौर में अपनी विनम्रता, बुद्धिमत्ता और समर्पण से अलग पहचान बनाई है। विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने हमेशा जनसेवा और समाज के वंचित वर्गों के सशक्तिकरण का प्रयास किया। तमिलनाडु में जमीनी स्तर पर उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं तथा विभिन्न राज्यों के सांसद और राज्यपाल के रूप में उनका अनुभव बहुत ही समृद्ध रहा है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यपाल के रूप में सेवा काल के दौरान श्री राधा कृष्णन ने हमेशा आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया। इस आधार पर उन्हें विधायी और संवैधानिक मामलों का भी व्यापक अनुभव है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधा कृष्णन एक सशक्त और प्रेरक उपराष्ट्रपति साबित होंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी श्री राधा कृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार मनोनीत किए जाने पर बधाई दी है।
The Election Commission of India has uploaded the list of 65 lakh voters whose names were removed from the Bihar draft electoral roll published on 1st of August after the Special Intensive Revision SIR exercise. The list of voters whose names were included in the Bihar voter list till 2025 but are not included in the draft roll have been uploaded on the official website of the Office of the Chief Electoral Officer, Bihar.
The booth-level officers, with the help of booth-level agents appointed by the political parties and other officials, have prepared the list of voters whose numeration slips have not been received. The notice further says that any dissatisfied person can submit their claim along with a copy of their Aadhaar card. With this initiative, the downloaded list will provide details of excluded electors' serial number, epic number, name of voter, relation type, name of relative, old part number, old serial number, age and gender. It also mentioned the reason for their non-inclusion in the 1st August draft roll. The publication of the excluded voters under the SIR exercise in the poll-bound Bihar came after the interim order of the Supreme Court. The Apex Court has directed the Election Commission of India to publish the name of 65 lakh voters excluded from the draft electoral roll, including reasons behind their exclusion. With Dharmendra from Patna, this is Deepmala Kaushik for Akashvani News.
चीन के विदेश मंत्री और कम्युनिस्ट पार्टी पोलित ब्यूरो के सदस्य वांग ई आज से दो दिन की भारत यात्रा पर हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल के निमंत्रण पर उनकी ये यात्रा हो रही है। चीन के विदेश मंत्री भारत के विशेष प्रतिनिधि डोवाल के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के 24वें दौर में शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ भी चीनी विदेश मंत्री की द्विपक्षीय बैठक होगी।
In Maharashtra, heavy rain continued to lash Mumbai, Konkan and Ghat areas for the third consecutive day. A red alert has been issued in Konkan, Mumbai metropolitan region and Ghat areas of western Maharashtra for the next 12 hours. An orange alert has been issued in Palghar, Thane, Mumbai city, Mumbai suburbs, Raigarh, Ratnagiri, Sindhudurg, Yavatmal, Chandrapur, Gadchiroli districts as well as Satara Ghat, Kolhapur Ghat. More on this from our correspondent.
Meanwhile, due to rough sea condition and winds are likely to blow at 50 to 60 km per hour, the State Emergency Operation Center advised fishermen to avoid to go into the sea. The Kundalika River in Raigarh district has crossed the warning level, while Jagbudi River in the Ratnagiri district has crossed the danger level. The state administration has instructed the National Disaster and State Disaster Response Force to be alert for emergency situations. Bhavna, Akashvani News, Mumbai.
Continuous rain in Himachal Pradesh and cloud bursts in Jammu and Kashmir region have increased water levels in the rivers, especially Ravi and Bias in Punjab. Villages living near these rivers and those in Pathankot, Gurdaspur, Kapurthala, Hoshiarpur, Fazilka and Ferozpur districts are having sleepless nights. Reigning world champion and two-time Olympic medalist Neeraj Chopra has officially booked his place in the 2025 Diamond League final set to be held in Zurich, Switzerland on 27th and 28th of this month. Despite skipping the recent Cilicia leg, Chopra's earlier performances this season were strong enough to guarantee his qualification. With 15 points from just two appearances, he joins the list of top contenders in the men's javelin throw final as per the latest standings released after the Cilicia leg on Saturday.
ये थे अब तक के मुख्य समाचार। अब रुक करते हैं महानगरों के समाचारों का।
Let's begin with Chennai. Chennai City Police Commissioner A. Arun said that the cybercrime police have been facing certain difficulties in blocking hate videos and reels quickly. In an interaction with the media, he said that law enforcement can request the social media network to block or remove content or accounts that contain illegal activities or communal hatred. They have different norms for blocking or removing the contents, and also those norms were framed by them according to the law of the country in which the company is registered.
अब दिल्ली की खबर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल छात्रों से 2047 तक समृद्ध भारत के उद्देश्य को साकार करने के लिए आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के परिसर में छात्रों और अध्यापकों के साथ बातचीत में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इस दौरान श्री प्रधान ने छात्रों से उनके सपनों, आकांक्षाओं, अनुसंधान के क्षेत्रों, तकनीकी चुनौतियों और आगे बढ़ने के अवसरों पर उनके दृष्टिकोण के बारे में भी जानकारी ली। श्री प्रधान ने क्षमताओं को बढ़ाने और नवाचार की भावना का विस्तार करने पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने छात्रों को आश्वासन दिया कि सरकार आने वाली पीढ़ियों के शोधकर्ताओं और नए विचार रखने वाले लोगों का समर्थन करेगी ताकि भारत समस्याओं के समाधान के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित हो सके। श्री प्रधान ने छात्रों को अपने नए विचारों को आगे लाने, चुनौतियों पर काम करने और हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने तक निरंतर प्रयास करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया।
And if we talk about Hyderabad, at the Hyderabad Property Show 2025, Union Coal Mines Minister G. Kishan Reddy urged construction firms to use indigenous materials aligning with global trends. He emphasized quality and consumer interest in Hyderabad's booming construction sector, assuring government support. Highlighting rapid growth in IT, pharma and infrastructure, he mentioned upcoming airports in Warangal and Adidabad, upgrades to MMTS trains with AC coaches and the pending metro project, which he said will be completed soon.
A Mumbai, Maharashtra ki khabar. बृहन मुंबई नगर निगम BMC ने नागरिकों से इस बारे में अपनी राय देने का आह्वान किया है कि क्या शहर भर के कबूतर खानों में कबूतरों को नियंत्रित तरीके से दाना खिलाया जाना चाहिए। नगर निगम के अनुसार इस मुद्दे पर दादर कबूतर खाना ट्रस्ट बोर्ड, यास्मीन भंसाली एंड कंपनी और पशु अधिकार कार्यकर्ता पल्लवी पाटिल से 3 आवेदन प्राप्त हुए हैं। ये आवेदन BMC की आधिकारिक वेबसाइट पर जनता के अवलोकन के लिए उपलब्ध हैं। प्रशासन ने 18 अगस्त से 29 अगस्त 2025 तक आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं। नागरिक suggestions@mcgm.gov.in पर ईमेल के माध्यम से अपनी राय भेजकर या कार्यालय समय के दौरान परेल स्थित एफ साउथ वार्ड कार्यालय में कार्यकारी स्वास्थ्य अधिकारी को सीधे लिखित प्रतिक्रिया देकर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। 13 अगस्त को बृहन मुंबई नगर निगम BMC ने बॉम्बे उच्च न्यायालय को सूचित किया कि वो दादर कबूतर खाना में प्रत्येक सुबह 2 घंटे, सुबह 6 बजे से 8 बजे तक कुछ विशेष शर्तों के साथ कबूतरों को नियंत्रित मात्रा में दाना खिलाने की अनुमति देने का इरादा रखता है।
And if we talk about Bangalore, at an event in Dharwad, critic Anand Zunjarwad emphasized that Dr. Bendre's Gyanpith winning poetry collection, Naku Tanti, can be understood by readers with a strong literary background. Speaking on the blend of art and principles in the poems, he noted that while the work is complex, it reflects Bendre's life experiences, pain and sensibilities. And he also said that the poems are a creative fusion of poetic art and deep philosophical principles, and understanding them requires insight into the poet's lived experiences and emotional depth. The event was organized by the Dr. Dara Bendre National Memorial Trust.
अब कोलकाता पश्चिम बंगाल का रुख करते हैं। ईस्ट बंगाल FC ने कल कोलकाता के युवा भारती क्रीड़ांगन में डूरंड कप ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल मैच में मोहन बगान सुपर जायंट को 2-1 से हरा दिया। मैच का पहला गोल 38वें मिनट में पेनल्टी के जरिए आया, जब दिमित्रियोस डायमंटाकोस ने पहले हाफ में ईस्ट बंगाल के लिए गोल किया। दूसरे हाफ में 52वें मिनट में डायमंटाकोस ने ईस्ट बंगाल के लिए दूसरा गोल किया। मोहन बागान सुपर जायंट्स के अनिरुद्ध थापा ने 68वें मिनट में अपना एकमात्र गोल किया। ईस्ट बंगाल FC अपने अगले मैच में सेमीफाइनल में डायमंड हार्बर FC के सामने अपनी चुनौती पेश करेगा। और अब महानगरों का के मौसम का हाल जानते हैं। दिल्ली में आज बादल छाए रहने तथा 1 या 2 बार गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में आज सामान्य रूप से बादल छाए रहने तथा तेज बारिश होने की संभावना है। यहां का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कोलकाता में आज गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं तन्वी से।
Absolutely. Chennai is expected to have a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 25 degrees Celsius and maximum will be around 31 degrees. Bangalore is expected to have a generally cloudy sky but with moderate rain. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and maximum will be around 25 degrees. Hyderabad is expected to have a generally cloudy sky with light rain or drizzle. The temperature will hover somewhere between a minimum of 21 degrees and a maximum of 27 degrees Celsius.
और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का। आज 18 अगस्त है। देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन कई कारणों से महत्वपूर्ण है। आइए नजर डालते हैं।
Let's begin with the year 1800. Fort William College was established at Calcutta.
जी, 1868 में आज ही के दिन फ्रांस के खगोल विद पियरे जेनसिन ने हीलियम की खोज की।
In the year 1907, Madame Bhikaji Kama addressed the International Socialist Congress at Stuttgart, Germany.
1945 में आज ही के दिन सुकर्णो ने इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर कामकाज शुरू की।
In the year 1951, Indian Institute of Technology was opened in Kharagpur, West Bengal.
1949 में आज ही के दिन हंगरी ने संविधान अंगीकार किया।
In the year 1990, President R. Venkataraman presented the colors to the Officers Training Academy in recognition of their services to the nation.
आज ही के दिन 1982 में सोवियत संघ द्वारा एक महिला अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन सैल्यूट 7 के लिए भेजी गई।
In the year 1997, Shanvac B, India's first genetically engineered vaccine for hepatitis B was launched. And in the year 2010, a moment of topographical revolution unfolded as TVS Electronics introduced the TVS Gold Bharat keyboard featuring the newly adopted Indian rupee symbol.
अब समय है उन विभूतियों को याद करने का जिनकी आज पुण्यतिथि, जन्मदिन या जन्म दिवस है।
Okay, let's talk about the first person and we're talking about Pratima Bedi. Today is her death anniversary. An Indian model who later became an Odissi dancer. In 1990, she initially founded Nrityagram, a dance school near Bangalore, Karnataka, and it became India's first free dance Gurukul village for various Indian classical dances consisting of 7 Gurukuls for the 7 classical dance styles and 2 martial art forms. In 1992, Pratima Bedi appeared in Pamela Brooks English film Miss Betty's Children.
एक व्यक्ति किसी विचार के लिए मर सकता है, लेकिन वो विचार उसकी मृत्यु के बाद हजारों लोगों के जीवन में अवतरित होगा। ये विचार थे सुभाष चंद्र बोस के। आज पुण्यतिथि है सुभाष चंद्र बोस की। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। भारत के इतिहास में ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं हुआ जो एक साथ महान सेनापति, वीर सैनिक, राजनीति का अद्भुत खिलाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुरुषों, नेताओं के समकक्ष साधिकार बैठकर कूटनीति तथा चर्चा करने वाला हो। भारत की स्वतंत्रता के लिए सुभाष चंद्र बोस ने करीब करीब पूरे यूरोप में अलख जगाया। बोस प्रकृति से साधु, ईश्वर भक्त तथा तन एवं मन से देशभक्त थे। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह को नेपोलियन की पेरिस यात्रा की संज्ञा देने वाले सुभाष चंद्र बोस का एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसका मार्ग कभी भी स्वार्थों ने नहीं रोका, जिनके पांव लक्ष्य से कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने जो भी स्वप्न देखे उन्हें साधा। नेताजी में सच्चाई के सामने खड़े होने की अद्भुत क्षमता थी।
सांस थमती गई न नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दी।
Today is the death anniversary of Persis Khambata, an Indian actress, model and beauty pageant title holder, best remembered for playing Lieutenant Leah in the feature film Star Trek The Motion Picture 1979, and she shaved her head for the role. She became the first Indian citizen to present an Academy Award in 1980, and she also played different roles in multiple Hollywood movies.
आज पुण्यतिथि है श्री नारायण चतुर्वेदी की। उनका जन्म 28 सितंबर 1895 को इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे हिंदी के साहित्यकार, प्रचारक, सर्जक तथा पत्रकार थे जो आजीवन हिंदी के लिए समर्पित रहे। वे सरस्वती पत्रिका के संपादक भी थे। उन्होंने राष्ट्र को हिंदीमय बनाने के लिए जनता में भाषा की जीवंत चेतना को बढ़ावा दिया। अपनी अमूल्य हिंदी सेवा द्वारा उन्होंने भारत रत्न मदन मोहन मालवीय तथा पुरुषोत्तम दास टंडन की योजनाओं और लक्ष्यों को आगे बढ़ाया।
Today is the birth anniversary of Lieutenant Colonel A.N.S. Tarapore, an Indian soldier awarded the Paramveer Chakra. Let's hear more about him, and the clip that you're about to listen is taken from the News On Air official YouTube channel.
Born in Mumbai in 1923, Lieutenant Colonel Ardeshir Burzorji Tarapore was commissioned in Pune House in April 1951. The biggest tank battle of the Indo-Pak War in 1965 took place at Filora in Sialkot sector. During the southern thrust of Indian Army on Kaloi-Filora axis, the 17 Horse, commanded by Lieutenant Colonel A.B. Tarapore, advanced on the right flank. Lieutenant Colonel Tarapore defied enemy's charge, held his ground and gallantly attacked Filora with one of his squadrons supported by an infantry battalion. Though under continuously enemy tank and artillery fire, he remained unperturbed throughout his action. When wounded, he refused to be evacuated. Later, Lieutenant Colonel Tarapore led his regiment to capture Wazir Wali. Unmindful of his injury, he led his regiment and captured Jasoran and Butur Dongradi. Inspired by his leadership, the regiment fiercely attacked the enemy armor and destroyed around 60 enemy tanks. Lieutenant Colonel Tarapore was mortally wounded in this action. Lieutenant Colonel Ardeshir Burzorji Tarapore was awarded Paramveer Chakra posthumously. The nation salutes him.
Today is the birthday of Sampoorn Singh Kalra. Listeners, don't be
confused. के महलों की वो पेचीदा दलीलों की सी गलियां सामने टाल के नुक्कड़ पे बटेरों के कसीदे गुड़गुड़ाती हुई पान की पीकों में वो वाह वाह चंद दरवाजों पे लटके हुए बोसीदा से कुछ टाट के पर्दे एक बकरी के ममियाने की आवाज और धुंधलाई हुई शाम के बेनूर अंधेरे और धुंधलाई हुई शाम के बेनूर अंधेरे ऐसे दीवारों से मुंह जोड़ के चलते हैं यहाँ चूड़ी वाला के कटरे की बड़ी भी जैसे अपनी बुझती हुई आंखों से दरवाजे टटोले इसी बेनूर अंधेरी सी गली कासिम से एक तरतीब चरागों की शुरू होती है एक कुरान सुखन का सफा खुलता है और असदुल्ला खान गालिब का पता मिलता है।
मिर्जा गालिब का पता कविता के अनोखे अंदाज में बता रहे थे गुलजार। आज जन्मदिन है गुलजार का। उनका जन्म 18 अगस्त 1936 को हुआ था। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार होने के साथ ही वे एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक और नाटककार भी हैं। इनकी रचनाएं मुख्यतः हिंदी, उर्दू तथा पंजाबी में हैं। गुलजार को वर्ष 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और वर्ष 2004 में भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2009 में डैनी बॉयल द्वारा निर्देशित फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर में उनके द्वारा लिखे गीत जय हो के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीत का ऑस्कर पुरस्कार भी मिल चुका है। इस गीत के लिए गुलजार को ग्रैमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। वर्ष 2013 के लिए गुलजार को भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया।
Hey! बाबू, जब किसी आदमी के साथ बेइंसाफी होती है ना, और होती चली जाती है, अकेले वो लड़ नहीं पाता, तब वो अपनी तरह के और लोगों को इकट्ठा कर लेता है, कभी मोहल्ले और शहर के नाम पर, कभी जाति या धर्म के नाम पर, देश के नाम पर, लेकिन उसकी लड़ाई होती उसी बेइंसाफी के खिलाफ है। जब चाहो इतिहास उठाकर देख लो, यही होता रहा है, यही होता रहेगा।
जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए, मिले जो हमें धूप में मिले छाव के ठंडे साए।
आज जयंती है विजय लक्ष्मी पंडित की। उनका जन्म 18 अगस्त 1900 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे एक संपन्न कुलीन घराने से ताल्लुक रखने वाली और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। विजय लक्ष्मी पंडित ने भी देश की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें जेल में बंद किया गया था। विजय लक्ष्मी एक पढ़ी लिखी और प्रबुद्ध महिला थी और विदेशों में आयोजित विभिन्न सम्मेलनों में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। भारत के राजनीतिक इतिहास में वे पहली महिला मंत्री थी। संयुक्त राष्ट्र में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी वही थी। विजय लक्ष्मी पंडित स्वतंत्र भारत की पहली महिला राजदूत थी, जिन्होंने मॉस्को, लंदन और वॉशिंगटन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और आज जयंती है विष्णु दिगंबर पलुस्कर की। उनका जन्म 18 अगस्त 1872 को कुरंदवाड़ बंबई में हुआ था। वे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में एक विशिष्ट प्रतिभा थे।
Today is the birth anniversary of Patrick Swayze, an American actor, singer, songwriter and dancer, known for his romantic, tough and comedic roles in blockbusters and cult films. He received a star on the Hollywood Walk of Fame in 1997. And let's hear a song sung by him, She's Like a Wind.
She leads me to moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, but she doesn't know what she's done. I feel her breath in my face, her body close to me.
आज जन्मदिन है दलेर सिंह का। उनका जन्म 18 अगस्त 1967 को पटना में हुआ था। उन्हें दलेर मेहंदी के नाम से जाना जाता है। वे एक भारतीय गायक, गीतकार, लेखक और रिकॉर्ड निर्माता हैं। उन्होंने भांगड़ा को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने में मदद की है, साथ ही बॉलीवुड संगीत से स्वतंत्र भारतीय पॉप संगीत को भी वे अपने नृत्यों, गीतों, पगड़ी और लंबे लहराते वस्त्रों के लिए जाने जाते हैं। 1994 में उन्हें कजाकिस्तान के अल्माटी में आयोजित वॉइस ऑफ एशिया अंतर्राष्ट्रीय जातीय और पॉप संगीत प्रतियोगिता में सम्मानित किया गया। आज जयंती है बाजीराव प्रथम की। उनका जन्म 18 अगस्त 1700 को हुआ था। मराठा साम्राज्य का महान सेनानायक थे वे। वे बालाजी विश्वनाथ और राधाबाई के बड़े पुत्र थे। राजा शाहू ने बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाने के बाद उन्हें अपना दूसरा पेशवा नियुक्त किया था। बाजीराव प्रथम को बाजीराव बल्लाल तथा थोरले बाजीराव के नाम से भी जाना जाता है। और आज जन्मदिन है अरुणा ईरानी का। उनका जन्म 18 अगस्त 1946 को मुंबई में हुआ है। अब समय है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं पर समाप्त करने की।
Stay tuned for coming up next is समाचार प्रभाता हिंदी न्यूज बुलेटिन followed by मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश at 8:15 AM. Thanks for tuning in. Have a superb day. Namaskar.